نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دم ذریع علاج اس میں سے آج ہم کریں گے نیا ٹاپک شروع اندرونی یا بیرونی زخموں کا علاج پانچویں بیماری ہے جس کو آج ہم دیکھیں گے پیج نمبر 27 آپ دیکھیں کہ انسان جتنی بھی احتیاط کرے لیکن پوری احتیاط کے باوجود بھی زخم لگ ہی جاتے ہیں کام کرتے ہوئے چھری لگ گئی ناخن کاٹتے ہوئے نیل لگ گیا کہیں گئے اللہ کے رستے کے زخم تو ہمیں کم ہی پڑتے ہیں لیکن اپنے ذاتی طور پہ بھی پڑتے ہیں ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ جس نے ہمیں ہر طرح کے زخموں کا بیماریوں کا علاج بتایا تو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے کہ کیا قرآن اور سنت میں زخموں کا بھی کوئی علاج ہے اب دل میں سوال آتا ہے لو زخم کا بھی علاج کوئی ہوگا تو بالکل ہوتا ہے اور میں نے جو ہی بیماری کا نام پڑھا تو مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی کہ اگر تم درد کھینچتے ہو تو کیا ہوا وہ بھی تو درد سہتے ہیں تعلمون فانہم یعلمون مسلمانوں اگر تمہیں اللہ کے رستے میں کوئی تکلیف کوئی درد کوئی آتا ہے مسئلہ تو پھر ان کو بھی تو آتا ہے نا لیکن تمہیں اللہ سے بہت اچھی امیدیں ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ سے امیدیں نہیں ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ زخم اگر ہو جائے تو اس معاملے میں اسلام کیا سکھاتا ہے جب کوئی شخص بیمار ہوتا یا کہیں اس کے جسم پر زخم ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی مبارک کو اس طرح رکھتے حضرت سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنی تشخد والی انگلی کو زمین پر رکھا پھر اس کو اٹھایا اور یہ دعا پڑھتے یعنی تشخد والی انگلی کو ایسے رکھا جیسے یوں ٹھیک ہے زخم پر یوں رکھتے یہ آپ سوچیں نا کہ یہ ہاتھ ہے یہاں زخم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رکھتے اور پھر اس کو اٹھاتے ایسے اور پھر یہ دعا پڑھتے آپ بھی دہرا لیں بسم اللہ تربتو اردینا بریقتی بعدینا یشفا سقیمنا بإذنی ربنا لکھے اس کا لفظی ترجمہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ تربتو مٹی لگ گئی اردینا ہماری زمین کی بریقتی بعدینا کسی ایک کے ہاتھوں سے یشفا وہ شفا دیتی ہے سقیمنا ہمارے بیماروں کو بِإِذْنِ رَبِّنَا ہمارے رب کے حکم سے پورا پڑھیں گے تو کیا ترجمہ ہوگا بسم اللہ تربت اردینا بریقتی بعدینا یشفا سقیمنا بِإِذْنِ رَبِّنَا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی کسی ایک کے ہاتھوں کے ساتھ لگ کر ہمارے رب کے حکم سے شفا دیتی ہے دیکھیے ایک ایک جملہ جو ہے نا توحید میں ڈوبا ہوا ہے نہ مٹی میں طاقت ہے نہ کسی کی انگلی میں طاقت ہے طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جو کسی بھی چیز میں اپنی طرف سے برکت اور شفا ڈال دے تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے جب کسی کو کوئی زخم ہوتا تھا تو اس وقت وہاں ہاتھ رکھ کے اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک اپنی شہادت والی انگلی پر لگا کر اسے مٹی پر لگاتے پھر وہاں سے جو مٹی سے لگتی اسے زخم یا تکلیف والی جگہ پر رکھتے اور یہ کلمات پڑھتے بات سمجھ گئے دیکھیے مٹی کی نا مختلف قسمیں ہوتی ہیں تراب یہاں جو ہے نا تربتو تو یہ تراب صحیح ہے قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس ایک لفظ کے اندر ہمیں کیا باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب کبھی زخم ہو اب آپ کے میرے ہاتھ میں زخم ہے تو ہم ہاتھ کو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک لگایا تھا وہ تھوک کی برکت نہیں تھی یہ ایسی جیسے میڈیم تیار کرنا جیسے آپ نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو کسی کریم میں مل لیتے ہیں نا وہ چیز تو وہ تھوک اس وقت ایک قسم کا میڈیم تھا جو ٹچ کرتا زخم کے اوپر اور زخم کے اندر اس کا اثر آتا یہ وہی چیز ہے جیسے کچھ لوگ پانی پہ دعائیں پڑھ کے پھونکتے ہیں نا تو اس وقت پانی کیا ان کے خیال میں بنتا ہے پانی تو وہی ہے جو ہوتا ہے لیکن پانی ایک میڈیم میڈیم کو اردو میں کیا کہیں گے ذریعہ یعنی جس کے ذریعے سے ہو گیا چیز تو بعض دفعہ آپ نے کوئی چیز نمک ڈالنا ہے یا کوئی رنگ ڈالنا ہے کھانے میں تو آپ سوکھا نہیں ڈالتے پانی میں گھول کے ڈالتے ہیں کیوں کہ پانی کی کیفیت ہے کہ وہ سارے پہ پہنچ جاتا ہے تو سوکھی انگلی بھی رکھ سکتے ہیں آپ لیکن میں بھی اس کو اگر ہم بات والی بات کو دیکھیں تو سوکھی انگلی زخم پہ پوری ٹچ کرے نہ کرے لیکن اگر گیلی انگلی ہوگی اور مٹی لگی ہوگی اور وہ مٹی اس پہ کریں گے تو اسے کیا ہوگا کہ وہ زخم کے اوپر ایک قسم کا پھاہا سا بن جائے گا تو بہرحال آپ وہ کریں نہ کریں لیکن یہ کہ یہ دعا آپ یاد کر سکتے ہیں बच्चों को चोटें लग जाती हैं, जख्म लग जाते हैं। बात वाजे हुई आपके लिए? शहादत की उंगली पर मट्टी लगाई और वो मट्टी, गीली मट्टी, वो आपने जख्म वाले हिस्से पे रखी और उसके बाद ये दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह ही। असल चीज दुआ है। अगर ये आखिरी अमल नहीं भी करे ना चाहें तो नहीं करें, लेकिन जख्म के ऊपर आप हाथ रख के जिस हद तक भी हो सके तो इस दुआ को पढ़ लें। बच्चों को भी सिखाएं छोटी छोटी दुआएं, और ये दुआ हमारे कल्चर में बिल्कुल कॉमन नहीं है। और नीचे अगर आप रेफरेंस देख रहे हैं ना, ये बुखारी और मुस्लिम की दुआ है। यहाँ से क्या पता चलता है कि अभी बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है दुआओं का, जो उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हुआ। चूंकि इस बुक के राइटर अरब हैं, उन्होंने अरबी की असल हदीस की जो बुक्स हैं उनमें से ये हदीसें ली तो हम तक पहुंच गई। और आपको अभी शायद अंदाजा है कि नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत हदीसों को जानते हैं, अभी इतना बड़ा खजाना है जिसका उर्दू में ट्रांसलेशन नहीं हुआ। आप में से कोई सवाल कर सकता है कि हमने तो कभी ये दुआ नहीं पढ़ी, तो वजह यह है कि अभी तक उर्दू में इसका तर्जमा नहीं हुआ था। समझ आई? जिन्होंने जिन दुआओं के तर्जमे पेश किए, नमाज की जिन दुआओं का पेश किया, वो हम तक पहुंच गया, वो हमारे जुबान ज़दे आम है। यदि आपको मैं एक सोचने का अंदाज बता रही हूँ कि पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में वो चीज़ें आम हो गई, वो मसले मसाइल कॉमन हो गए, जिसको किसी दौर के आलिम ने उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन हम तक बहुत सारी चीज़ें जो ना पहुंची अभी उर्दू में ना होने की वजह से, अब वो दीन का हिस्सा है ना, वक्त के साथ साथ अल्लाह उसको डिस्कवर करा रहा है। ये एक किस्म का अल्लाह का एक कानून भी है कि वो वक्त के साथ साथ उलूम को खोलता जा रहा है। तो बहरहाल एक दफ़ा दोहराइए इस दुआ को, बिस्मिल्लाही तुरबतु अर्दीना बिरीकती बादीना युश्फा सकीमुना बेइज़्नी रब्बीना। चलिए, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो रूह को लगे हुए जख्म भी और जिस्म के भी जख्म जो हैं वो दूर कर दे। बच्चों को जख्म लगे तो वो फौरन क्या करते हैं? पट्टी, जी पट्टी बांधने भागते हैं ना, पट्टी करनी है, खून निकलने वाला है। और छोटे बच्चों को पट्टी का बड़ा शौक होता है ना। एक बच्चा था तो वो कहता था, मुझे पट्टी बांध दो, इधर से खून निकलने वाला है। तो निकला तो कोई नहीं है, तो निकलने वाला है ना। तो ये दुआ आप अपने बच्चों के साथ भी याद कर सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला फायदा भी होता है, और अल्लाह ताला सबको बचा के भी रखे हर किस्म की तकलीफ और हर किस्म के जख्म से। आप देख रहे हैं कि हर मर्ज की दवा है, जिस पे एतकाद होता है ना बंदे को उससे आराम भी आ जाता है। ये मेरा आपका ईमान है। अच्छा, अब हमारे लोगों ने क्या करना है, इसको पेंसिलिन पे लगा के पढ़ना है, फिर इसको आईडेक्स पे लगा के पट्टियां करनी है, और कुछ ने घुटनों के दर्दों पे जो पट्टियां बांधते हैं उस पे ये दुआएं पढ़नी है। यकीन रखें, आप पूरे यकीन के साथ पढ़ेंगे, अल्लाह ताला आपको जरूर शिफा देगा इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला देख लेते हैं, ये तो सिंपल था। अब नेक्स्ट थिंग क्या है? मुसीबत का इलाज, पेज नंबर 28। अल्लाह ताला का फरमान है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन कबली अन नबराहा इन ज़ालिका अला अल्लाही यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर। सूरत हदीद आयत 22 से 23, 22 से 23। सूरत का नाम बाद में देखा, लेकिन मुझे पढ़ के ऐसे लगा कि ये अपनी अपनी आयत है, तो सूरत हदीद देखकर लगा कि ये वो सूरत है जो हम इतनी कसरत से सुनते हैं। बड़ी प्यारी आयत है, इसका तर्जमा जरा गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत सारे मसाइल का हल भी है। ना कोई मुसीबत दुनिया में आती है, न खास तुम्हारी जानों में, मगर इससे पहले कि हम इसको पैदा करें वो एक खास किताब में लिखी हुई है। ये काम अल्लाह ताला पर बिल्कुल आसान है, ताकि तुम अपने से फौतशुदा किसी चीज पर रंजीदा ना होना और ना अता करदा चीज पर इतरा जाओ, और इतराने वाले शेखी खोरों को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता। खुश रहने का नुस्खा है कि नहीं? कोई मुसीबत आपको पहुंची, अपने ऊपर लें, दुनिया में खास पर जान पे आई, किसी को भी आई, पहली बात यह है कि उसको अल्लाह ने पहले से लिखा हुआ था, पहले से लिखा हुआ था। आप कहते हैं नहीं, फलाने बद्दुआ मांगी फिर आई, किसी की नजर लगी, किसी ने कहा था ऐसा होगा फिर होगा। अल्लाह कहते हैं जो तकलीफ तुम्हें आनी है वो आज से 50,000 साल पहले, क्या दुनिया बनने से पहले का लिखा हुआ है। पहली बात समझ आ गई। आप कहते हैं ये कैसे हो सकता है, अल्लाह ताला ने इतनी लंबी प्लानिंग कैसे कर ली, हम तो 1 साल की भी कर लें तो बड़ी बात है। तो कहा कि इन नज़ालिका लल्लाही यसीर, ये बात अल्लाह पे बड़ी आसान है। अब करना क्या है ये देखिए, आप मैं अपनी मुसीबतों को हल्का कर सकते हैं इस बात से, लिकै ला तासौ अला मा फातकुम, ना तुम गम किया करो, तास यास आसा यासी, सूरत यूसुफ में भी ये लफ्ज सुने हैं, गम खाना या सफा अला यूसुफ, वो लफ्ज मिलते जुलते हैं इससे, क्या तुम्हें गम ना हो किस पे अला मा फातकुम। फातकुम क्या है? फौत होना। जो तुमसे चूक गया, मसलन प्लेट टूट गई, फौत हो गई ना। सेलफोन की स्क्रीन टूट गई, कोई इंसान मर गया, कोई रिश्तेदार चला गया, अल्लाह कहते गम ना खाया करो। कह दो कि ये तो पहले से लिखा हुआ था, ये तो होना ही था। और वला तफरहू बिमा आताकुम, जो तुमको अता किया उस पे खुशियां ना मनाओ, फख्र ना करो। ये क्या मतलब है? कि खुशी के अंदर जरा थोड़े से आपे में रहा करो। आज मुसलमानों का मामला दोनों में ऑपोजिट है। दुख गम आए डिप्रेशन में चले जाते हैं, खुशी आए कपड़ों से बाहर निकलने लगते हैं। तो खुश रहने का राज क्या है? गम आए तो बहुत ज्यादा गम ना करें। अल्लाह के नबी ने बात कह दी कि मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, जब खुशी आती है शुक्र करता है, शुक्र के बदले जन्नत पाता है, गम आता है गम के बदले में जन्नत पा लेगा नेमतों का शुक्र करके। यानी सब्र और शुक्र जन्नत के दो दरवाजे हैं। तो मेरे आपके लिए खुश रहने का राज क्या है? कि खुशियों में हद से ना गुजरे। याद रखें, जो एक एक मस्ती करता है ना बंदा खुशी के मौके पे, ये मस्ती है, मैंने जान के लफ्ज बोला है क्योंकि इसमें बहुत कुछ आता है, ये एक एक बाद में निकलती है। और जब निकलती है ना तो हमें समझ नहीं आता ये किस गुनाह की सजा है। मैं अपने तौर पे इस बात को इससे लेती हूँ, कभी मना करता है ना कोई कि खट्टा ना खाओ। हमारे मुल्कों में पाकिस्तान में लोग कहते हैं खट्टा ना पियो, खाली लेमन ना खाओ गला खराब हो जाएगा, गोलगप्पे ना खाओ, कोई भी सोच ले उसका खट्टा ना पियो। तो लेकिन कभी मस्ती चढ़ी होती है, पीना पी लेते हैं। अब मिर्चें लगी तो ऊपर से ठंडा पानी पिया, मस्ती की ना, बाद में रात को गलों में दर्द, अगले दिन यहाँ पका हुआ बिलगम, फिर 2-3 दिन में छींके, भुगता मैंने उस वक्त थोड़ा सा मजा लिया खट्टा पीने का, भुगता। इसी तरह हर नाफरमानी, लोग उसको नाफरमानी समझे कि ना, लोग उसको क्या अच्छा कहें बुरा, अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी है वो बाद में भुगतनी पड़ती है। मैं इसको अपने लिए ऐसे सोचती हूँ, जितना सजा भुगतने का दम है ना उतनी मस्ती कर लो। आप फील करके देखेंगे कि आज हम मुसलमानों में अक्सर ये कल्चर ही बनता जा रहा है, जब खुशियों के मौके आते हैं तो हम उस वक्त वो करना चाहते हैं जो आमतौर पे भी नहीं कर रहे होते, और उसके बाद हमारे साथ अक्सर वो हो रहा होता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, फिर हम भी उसकी कोई और तावील पेश करते हैं। जाहरी तावीलात तो हैं, थक गए, नजर लग गई, नजर लगने को तो हम नहीं कहते, लेकिन कुछ ना कुछ हम उसको किसी दूसरे पे डालना तो चाहते हैं। सीधी सी बात है कि मा साबकुम मिन मुसीबत इल्ला बिमा कसबत अईदीकुम। तो आप अपने बच्चे को भी कहते हैं कि इस वक्त आइसक्रीम खा रहे हो, रात को खांसी होगी तो मुझे न सताना, मस्ती कर लो, जैकेट नहीं पहन के जा रहे, हवा लगेगी, बीमार हो जाओगे, फिर रात को मुझे ना कहना। अल्लाह भी हमें आपको जुबाने खामोश में यही कहता है, कर लो मस्ती, भुगतनी तो पड़ेगी। हेयर और देयर, या हेयर आफ्टर या देयर आफ्टर। तो याद रखिए कि तकलीफें मुसीबतें आने का जो एक मौका हम अपनी जिंदगी में खुद लाते हैं वो क्या है? कि हम खुशियों में नाफरमानी करते हैं, गमों में भी नाफरमानी करते हैं। बात कितनों को समझ आई है? अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसीबतों का इलाज चाह रहे हैं ना। सीधी सी ठेठ बात करती हूँ, सीधी सी बात है, मुसीबत का बहुत सिंपल इलाज है, उससे बचना चाहते हैं ना, खुशियों में भी नाफरमानी नहीं करनी, गमों में भी नाफरमानी नहीं करनी, गर्मी में भी नहीं करनी, सर्दी में भी नहीं करनी, बहार में भी नहीं करनी, खिजा में नहीं करनी, घर में है तो नहीं करनी, वोकेशन पे गए हैं फेरिए पे गए नहीं करनी, हनीमून पे गए हैं फिर भी कोई नहीं करनी, हज पे गए हैं फिर भी कोई नहीं करनी। सीधी सी बात है। एक और बुक आ रही है अज़कारे मुसीबत, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको पढ़ानी है, कि जिसमें मुसीबतों के वक्त पढ़ने वाले अज़कार, आज कौन है जो मुसीबतों का शिकार नहीं है, हर एक ही है। तो इंशाल्लाह वो दुआएं सीखेंगे जिससे अल्लाह ताला हमें बचा ले। लेकिन अभी पहले पॉइंट में से हमने क्या सीखा? खुशी के वक्त में अल्लाह को राजी करना है, ना खुशी के वक्त में भी अल्लाह को राजी करना है। दूसरी आयत देखिए, सूरत तगाबुन आयत 11, मा असाब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह व मन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बह वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम। मा असाब मिन मुसीबतन, जो भी पहुंचती है तुमको मुसीबत, या फिर नहीं पहुंचती तुमको कोई मुसीबत, इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर वो अल्लाह के इज़्ज़न से है, व मन युमिन बिल्लाह यहदी कल्बह, और जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पे, राह दिखा देता है अल्लाह उसको, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। नोट कीजिएगा, इसमें एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, युमिन बिल्लाह यहदी कल्बा। क्या कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती? जो अल्लाह ताला पर ईमान लाए, अल्लाह ताला इसके दिल को हिदायत देता है, अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। ये किस हिदायत की बात है और ये किस ईमान की बात है? इस पे बहुत ही खूबसूरत बात है, उसको नोट कीजिएगा। मुसीबतें सब पे आती हैं, इंसानों में नेक है या बद, वली है पैगंबर है कोई भी है, काफिर है फाजिर है, मुसीबतों से बचावा नहीं। आप तस्दीक करते हैं इस बात की? किसी को कम आए किसी को ज्यादा, मोमिन को उसके ईमान की बदौलत जब कोई मुसीबत आ रही होती है ना, तो उसकी वजह समझ आ जाती है। वो मस्ती की थी ना उसकी सजा, वो कानून शिकनी की थी ना उसकी सजा, वो उस दिन रेड लाइट पे चल पड़ी थी ना, तो ये उसका टिकट घर में आया है, वो उस दिन ओवर स्पीडिंग की थी ना उसका टिकट आया। यहाँ मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं, आई थिंक सो, पता नहीं चलता। बाद में घर में टिकट आता है तो पता चलता है उस मौके पे आपने स्पीड की थी, ऐसे है ना कैमरे। अमेरिका में भी ऐसे ही है, सिस्टर्स कहती है हमें नहीं पता होता, घर में जब उनका वो खत आता है ना आपके नाम बड़ा प्यारा मोहब्बत भरा कि 70-80 पाउंड डाल दें या डॉलर भेज दें, फिर वो कहते हैं उस वक्त आपकी स्पीड इतनी पॉइंट इतनी थी, तो कहती हैं अच्छा मैंने तो सोचा था इतने पॉइंट काम है लेकिन इनके कैमरे में आ गए। बात समझिए, जब यहाँ के डिटेक्टर यहाँ की मशीनें पहचान लेती हैं कि आप जरा असल स्पीड से कुछ आगे ही चले गए, तो क्या अल्लाह को नहीं पता कि जिस स्पीड से हमने किसी काम को करना था उससे ज्यादा किए कि कम किए? तो जिस बंदे को तकलीफ के वक्त अपना गुनाह याद आ जाए ना, वो मोमिन है। सीधी सी बात है, हदीस में आता है, खुलासा है कि मुनाफिक की मिसाल उस गधे की है जिसको नहीं पता होता कि मेरे ऊपर बोझ मेरे मालिक ने मुझसे खुश होके लादा है या मुझसे नाराज होके, वो नहीं समझता। मुसीबतें भी आती हैं, वो फिर भी उसकी कोई ताबील ही ढूंढता, नहीं मौसम खराब हो रहा है ना इसलिए गला खराब हो गया, नहीं वो हवा चली है ना, नहीं वो ठंडे के बाद गर्म पी लिया था ना, वो उसके बाद तावीलात पे तावीलात। और मोमिन का हाल क्या है कि वो मैयूम इन बिल्ला यहदी कलबा, हजरत दाऊद का वाक्य है, कुरान पाक में आप पढ़ेंगे जब जिंदगी रहेगी, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा, कि उनको किसी तरीके से अल्लाह ताला ने आजमाया था, दूसरे लोग उनके सामने एक ऐसा मामला लेकर आए थे जिसमें हजरत दाऊद को अपना कोई फेल नजर आ गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे खूब समझ आ गई कि ये दो लोग जो मुकदमा मेरे सामने लेकर आए हैं मेरी भी हालत कहीं ऐसी तो नहीं है, तो आप और मैं अपने ऊपर ले, अपना ईमान का थर्मामीटर इस चीज को बना ले कि जब भी मुझे कोई तकलीफ आती है समझ आती है क्यों आई है। आप देखिए ना, पत्थर भी रास्ते में किसी के डाल दिया, या आपने चलते चलते किसी के रास्ते में एक छिलका फेंक दिया और आगे गया और आपका पाँव स्लिप हो गया, तो आप कहते हैं वो पीछे मैं किसी के लिए छिलका फेंक आई थी ना, मेरे साथ भी हो गया, ये मैं दिल तोड़ के आई हूं ना किसी का, तो ये देखें आज गाड़ी को झटका लग गया। ये इतनी बड़ी खूबी है, इसको फुरकान भी कहते हैं, क्राइटेरियन कहते हैं, कसवटी कहते हैं ईमान की, कि बंदे को सूझ सूझ जाए क्या गलत किया। अपने आप से पूछते हैं, मैं भी पूछती हूँ आप भी पूछते हैं, जब कोई मुश्किल आती है छोटी या बड़ी, सेलफोन टूट गया, आपके खाना पक्का और गिर गया, नीयत खराब तो नहीं थी? कुरान में इसकी मिसाल है, एक बाप था जब उसकी फसल उतरती थी, फल उतरता था, तो गरीबों को भी खिलाता था, बांटता भी था और आगे से बेचता भी था। बेटों ने सोचा कि अब्बा बड़ा बेवकूफ है, इतनी मेहनत से कमाता है उगाता है फसल, बाद में इतनी तो गरीबों को बांट देता है, चलो ऐसा करते हैं कि गरीबों को तो आदत है आने की कटाई वाले दिन, हम रातों रात जाके फसल काट आते हैं और फिर गरीब आएंगे नहीं। पूरा प्लान बनाकर गए, जब अल्लाह ने उनकी नीयतें देखी, रातों रात आग का भगोला आया, सारा बाग जल गया। सूरत नून की आयतें आप पढ़ लें, किस्सा बाग वालों का, जब वहां गए न बाग न बाग का कुछ, किधर गए, कहने लगे हम तो राह भटक गए, कहा राह नहीं भटके यही है, नीयत भटकी थी, अल्लाह ने सारी फसल को जाया कर दिया। फिर उनको समझ आया कि हम ही जालिम थे, हमने मस्कीनों का गरीबों का हिस्सा मारना चाहा, अल्लाह ने सारा मार दिया। यकीन करें ये कैफियत बंदे को सारी लज्जत ही खत्म कर देती है गुनाह से, वो जैसे हर वक्त अंदर से ताने पड़ते हैं ना, और करो शाबाश और करो शाबाश, पड़ेगी मार, गाड़ी में बैठे हुए झटका भी आपको पड़ा ना, तो आपको फौरन अपना गुनाह को याद आएगा, आपका नुकसान हुआ 1,000 करोन का, आप कहते हैं कहीं 1,000 करोन की मैंने डंडी मारी हुई है, ये 1,000 करोन का एक काम खराब हो गया। आप फील करके देखेंगे कि ये कैफियत दिन ब दिन फिर आपको कॉन्शियस करेगी, और ये मांगे, क्योंकि अल्लाह ने इसको कहा वो मैं यू में बिल्ला यहदी कल्बा, और अल्लाह ताला मुझे आपको ये अता करे। और इसके बरक्स उसकी मजबूरी, उसकी वजह, उसने कहा मैं तो बड़ी अच्छी हूँ। अच्छा, यहाँ एक सवाल भी आ सकता है, ये जो पहली बात बताई थी ना, पहला पॉइंट उसके अंदर, बस हम खम नहीं गुनाह करते, कोई और करता है, मजबूर कर देता है, या मजबूर होते हैं फिर अब क्या करें, तो क्या फिर भी मुसीबत आती है? यानी मेरा सवाल क्या है, हम बाहर कोई गुनाह कर रहे हैं, खुशी का मौका है, हमारे से कोई गुनाह हो रहा है, हमने नहीं किया, किसी और ने किया, तो क्या उसकी सजा भी हमें मिलेगी या सिर्फ उसको पड़ेगी? कितनों को समझ आया सवाल? मेरा सवाल अच्छा नहीं है। यानी किसी दूसरे ने कोई काम किया, मैं नहीं कह रही थी कि वो करे, उसने किया, तो क्या उसकी सजा फिर दुनिया में मुझे भी आएगी? कितने लोग कहते हैं आएगी? उसको मना नहीं किया। ओके, और देखिए, बच्चे ने ठंडा पानी पिया, मैंने आपको भी मिसाल दी थी ना, उसके गले पकड़े गए, बच्चा सारी रात रोया, जागा तो माँ नहीं जागी, बस यही है, इसका यही जवाब है। माँ को भी तकलीफ पहुंची, खिड़की, आप कहते हैं सर्दी बहुत है, खिड़की ना खोलो, गाड़ी की बंद कर दो, बाहर बर्फ है ये वो, कोई एक बंदा खिड़की खोलता है, शौक तो उसका है, तो क्या अंदर सारों को नहीं हवा लग जाएगी? तो इसीलिए तो कहा कि कुन तुम खैरा उम्मत नुखरीजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। फिर आप कहते हैं मुझे क्यों सजा मिली, मैंने तो बच्चे को कहा था, सजा इस बात की मिली कि आप उसके उस गुनाह पे खामोश रहे, आपने उसकी उस गुनाह पे वो रिएक्शन शो नहीं किया जो करना था। बात वाज़े, तो कितना आसान है अपने आप को मुसीबतों और गमों से बचाना, सिन फ्री, गुनाह फ्री जिंदगी कर ले, और पूरी तो नहीं हो सकती, कोशिश तो की जा सकती है ना, रिबेलियस नहीं बनना, सरकश नहीं बनना, अल्लाह से मुकाबला नहीं करना खुशियों के मौके पे, बस ये छोटा सा मैसेज है। तीसरी बात, जिसे कोई मुसीबत आए और वो ये दुआ पढ़े, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफली खैरम मिन्हा, बेशक हम अल्लाह ताला के हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं, ए अल्लाह तू मुझे इस मुसीबत का बदला अता फरमा और इसके पीछे इससे बेहतर चीज़ अनायत फरमा, तो अल्लाह ताला इसे इस मुसीबत के बदले में अजर अता फरमाते हैं और इससे अच्छी चीज़ भी अनायत फरमाते हैं। इस दुआ और इस हदीस के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? हजरत अबू सलमा, नबी सल्लम के सहाबी थे, अबू सलमा, बीवी का नाम उम्मे सलमा था, बेटा सलमा था, यानी हिजरत करने वाला जोड़ा था जिन्होंने बहुत शुरू में हिजरत की। तो एक दिन अबू सलमा घर आए तो उम्मे सलमा को कहते हैं कि आज एक ऐसी दुआ सीखी है कि जो किसी दुख तकलीफ पे बंदा पढ़ ले तो अल्लाह का वादा है कि उसको दुनिया में भी उसका नेमल बदल देता है और आखिरत में तो बदला मिलेगा। कहा अच्छा, कौन सी दुआ? यही दुआ थी जो भी हमने पढ़ी है, उम्मे सलमा ने याद कर ली। अल्लाह का हुक्म देखिए कि चंद दिन गुजरे, उसी अबू सलमा का इंतकाल हो गया, और उम्मे सलमा इद्दत के दौरान वो दुआ पढ़ रही हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती व अखलिफली खैरम मिन्हा। और दिल में क्या सोचती हैं, वादों पर यकीन देखिए, आपको जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ, दुआएं हम भी बड़ी पढ़ते हैं, सारी बुक्स सुबह उठ के पढ़ लेते होंगे, एक और काम बढ़ गया, लेकिन यकीन, कहती हैं अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह उसको दुनिया में भी उसका बेहतरीन अमल बदल देता है, तो शौहर था, अबू सलमा था, तीन चार बच्चे भी थे, और वो कह रही हैं अबू सलमा से अच्छा शौहर कहाँ मिलेगा? अच्छा, ये नहीं कह रही शौहर मिलेगा कहाँ, अब मैं बच्चों वाली, मेरे से किसने शादी करनी और मैं तो बूढ़ी, मैं वो शक ये है कि अबू सलमा जैसा नेक पायस, इतना मुहाजिर और हिजरत करके आने वाला, उस जैसा कौन मिलेगा? लेकिन यकीन है कि इससे बेहतर मिलेगा, और इधर इद्दत पूरी होती है और उधर अल्लाह का नबी उनके दरवाजे पे है कि उम्मे सलमा, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि मैं आपको निकाह का पैगाम दूँ। अल्लाह के नबी, आप मुझे निकाह का पैगाम देते हैं? कहा हाँ। कहा नहीं, मैं बड़ी उम्र की हूँ? कहा मेरी भी उम्र कम नहीं है। कहा मैं बच्चों वाली हूँ? कहा आपके बच्चे मेरे बच्चे। कहा मेरी तबीयत में गुस्सा बहुत है, ऐसे ही मैं कोई ऐसी बात कह दूं बीवी होने के नाते जो आपके मुकाम नबूवत के खिलाफ पड़े और मैं गुनाहगार हो जाऊं। कहा मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपका गुस्सा कम हो। कहा अच्छा, इतनी बात है, मुझे क्या इतराज़ है। तो वो उम्मे सलमा उम्महातुल मोमिनीन में शामिल हो गई। किस किस को इस दुआ पे यकीन है? मैं अपने दोनों हाथ खड़े कर सकती हूँ इसमें। यकीन करें, छोटी छोटी चोटें ये दीनी कामों में पड़ती हैं, सच बताऊँ, अल्लाह महफूज रखे, इनसे भी बचा के रखे, कोई भी मुबर्रा नहीं है। जब मुझे आपके स्कूल या पढ़ाने क्लासेस या किसी भी तरह से कोई नागवार बात सुननी पड़ती, इवन आपके मैसेज ही पढ़ लेती हूँ, आज मैं नहीं आ सकती, या आज मैं ऑफिस में नहीं होंगी, या आज मैं अपनी जगह पे नहीं, तो मैं यही दुआ पढ़ती हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा। और बाज लोग तो मैं कहती हूँ कि दुख जब उनकी तरफ से पहुंचता है ना, तो वो आपको मौका दे जाते हैं कि उससे अच्छा बंदा आ जाए, समझ आई? क्योंकि वखलुफ ली खैरा मिनहा, एक वक्त आता है फिर आप ऐसी दुआ पढ़ने के लिए मुंतजर रहते हैं कि जल्दी से कोई सदमा आए, मैं ये दुआ पढ़ूं और मैं अपने आप को पाक कर लूं। तो बिल्कुल पूरे यकीन से मांगा करें, कब टूट गया ना, पढ़ें ये दुआ, देखिएगा उससे अच्छा कब आएगा। कोई इंसान आपसे रूठता है, कोई रिश्ता छूटता है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल करूं, मैं बड़ा पर्सनल सा है, यानी सोचना खुद ही सिखा रही हूँ। बाप मर गया, आप ये दुआ पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा। अब इसका नेम उल बदल कहाँ से मिला, बात समझे? देखे ना, उम्मे सलमा ने पढ़ी, शौहर फिर मिल गया, बाप फौत हो जाए फिर कोई पढ़े, कहाँ से मिलेगा बाप? अब मां को कहे दूसरी शादी करो और उससे अच्छे मर्द से करो तो मेरा अच्छा बाप बने, नहीं जी, सबर आ जाता है जी। भाई बाप वाला रोल एक करें जी, ये भी मुमकिन है। और जी ससुर ऐसे मिल जाए, देखिए ये आपके दिल के सौदे हैं, मतलब ये इतनी पर्सनल बात है कि मेरा इस पर ईमान है कि मेरे वालिद की बड़ी सडन डेथ हुई थी, और वो इतनी सडन भी थी कि सडन क्या पता हो, फिर भी नहीं पता होता, आप लोगों में से कुछ सुन ही चुके हैं। मैं अपने पेपर देने जा रही थी मास्टर्स के, तो पीछे से उनकी सडन हमें डेथ पता चली, और विद इन 1 ईयर मेरी इनके साथ इंगेजमेंट हुई। मेरे बाप ने जितना मुझे सिखाने में मेरे साथ तावुन किया ना, मेरे शौहर ने उतना उसको आगे बढ़ाने में तावुन किया। मेरा दिल कहता है कि जो मुझे बाप से प्रोटेक्शन, मोहब्बत, और मैं अपने दीन पे ले रही हूँ इसको, दुनियावी रंग पे तो नहीं कह, मुझे वो सब अपने शौहर से मिल गए, और मुझे कभी अपने वालिद याद ही नहीं आए, ख्वाब में भी कभी देखूं तो ऐसे ही लगता है वो इधर ही है, और मेरे दिल के ऊपर बिल्कुल ऐसे सफेद चादर है। मेरी अम्मी कहती है तुम्हारे मुंह से कभी बाप के लिए दुआ नहीं सुनी ना, फिर कहती है शायद तुम्हारा हौसला नहीं पड़ता, तो मैं नहीं कहती कि अल्लाह उनको बख्शे, या मैंने अपने मुंह से कभी वो फौत का लफ्ज भी नहीं बोला, मेरे मेरे दिल में कोई सदमा ही नहीं, गम नहीं, मुझे यकीन है इस दुआ का असर है। इतनी कसरत से पड़ी, बिल्कुल बेगम, मैं कहती नहीं हम इधर से अच्छे हैं, हालांकि जिस वक्त उनका ये हुआ था तो लोग मेरे बारे में सोचते थे कि ये उनके बगैर नहीं रहेगी, एक होता ना क्लोज एसोसिएशन, तो जरबुल मिसल था, लेकिन मुझे उस वक्त भी कुछ भी नहीं हुआ। यानी मैं सोचती हूँ कि ये दुआएं इतना बड़ा एसेट है, हम रोते ही रहते हैं गमों को, आप दुआएं पढ़ें, अल्लाह किसी इंसान के रूप में आपको वो मोहब्बत दे देगा, ये अल्लाह के काम होते हैं, और आपको बेनियाज तो जरूर कर देगा, और क्या पता दुनिया में कितना आपको मजीद चोटें, सदमे, तकलीफें, कोई परेशानियां आनी थी, अल्लाह ने एक परेशानी देकर आपसे वो सारी हटा ली। इसको तो आप याद क्या करें, इसको हिफ्ज कर लें, जुबानी याद हो सब वक्त, दिन में कम से कम 8-10 दफा आप इस दुआ को पढ़ें, और ऐसे पढ़ें जैसे सांस चलती है ना, छोटी सी बात, घर गए मियाँ को गुस्सा आ गया, फौरन पढ़ लें इन्ना लिल्लाहि इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा। देखिए गैर महसूस तरीके से ये जो आपके लिए हालात दीन के लिए अच्छे नहीं हो जाते, दीन और दुनिया दोनों, आप में से कुछ सिस्टर्स को अगर दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, शौहर गुस्से वाले हैं, खाने के लिए गुस्सा करते हैं, हाइपर हैं, नाराज हो जाते हैं, आप इस दुआ को पढ़ें, जितनी दफा वो आप पे गुस्सा करें, आपकी बेइज्जती करें, कुछ भी करें, अल्लाह ना करे लेकिन होते हैं लोग, आप इस दुआ को पढ़ें और थोड़ी सी आवाज से पढ़ें, अल्लाह उनके दिल को बांध देगा। आपका बच्चा आपको सताता है, नहीं मानता, जवान होता हुआ बच्चा, आप जरा माशाल्लाह पर पुरजे निकल रहे हैं, कद भी आपसे लंबा हो गया, अब वो अम्मी को कुछ समझते नहीं है, आपको सताए, अम्मी चीखे, आप ऊंची पढ़ें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरा मिनहा। अम्मी आपने क्या पढ़ा है? बेटा मैंने ये पढ़ा है कि आपने जो मुझे तकलीफ दी है ना, अल्लाह ताला मुझे उस पर बेहतर बदला दे। आप यकीन करें अगली दफा आपके आगे नहीं बोलेगा, आजमा के देख लें। तो इंसानों से गम पहुंचे, अल्लाह की तरफ से जो भी चीज आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पहुंचती है ना, आप पूरे यकीन के साथ इस दुआ को पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपका दिल बांध देगा।